रही बात हमारे मुल्क में जो जहालत है, आप देखिए एक मजदूर है जो सुबह उठ के रोटी कमाने निकलता है। मैं सोचती हूँ कि वो मजदूर जिसके घर में रात की रोटी नहीं है, वल्लाही वल्लाही वो कम फिक्रमंद है। और वो अरबपति सेठ जिसके हाथ में हो सकता है कुछ ना हो, ये भी मैंने देखा है, करोड़ों लगाते हैं कारोबारों में और घर में सोमों पे रुलाते हैं, बददुआएं लेते हैं, डांट डपट लड़ाइयां झगड़े करते हैं चंद हजार के बिल पे। क्या करने आप लोगों ने, आपके बाद याद करने आपकी दौलत को, और बाद में वो दौलत लड़ाइयों और झगड़ों की मुसीबत। आज हम मुसलमान डी ट्रैक हैं, मेरे लफ्ज़ों पे माफ़ करिए, मुझे आदत पड़ गई इंग्लिश के लफ्ज़ बोलने की। हम मरकज से हटे हुए हैं, जैसे पुरकार का अंदर का हिस्सा कम कर दे ना इधर उधर तो दायरा गलत जगह पे लगता है। आज हम अपने दायरे में नहीं है इसलिए परेशान है। आप सोचते हैं मुल्क के हालात खराब है इसलिए परेशान है, नो। आप कहते हैं बिजली कई घंटे जाती है, फैक्ट्री की प्रोडक्शन कम है इसलिए परेशान है, नो। आप कहते हैं पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, गाड़ी रिक्शा महंगा हो गया इसलिए परेशान है, बिल्कुल नहीं। आप कहते हैं सुबह उठते हैं सुई गैस गई होती है, हमारी चाय में 2 घंटे लग जाते हैं इसलिए परेशान है, बिल्कुल भी नहीं है। आप दसियों चीजें गिन लें, हमारी परेशानी की असल वजह यह है कि हम अपने मरकज से हटे हुए हैं। और मरकज क्या था? कुम फानजर। नबी सल्लम ने 13 साल करके दिखाया। आप कभी दीन की तरतीब देखे ना, आज मुझे आपको इस पाकिस्तान को अगर बेहतर करना है तो हमें इसमें अफराद की तरबियत, ये जो 100 कुछ सहाबी थे मक्का से आपके साथ निकले, ये असल में टीम तैयार हुई थी। हम अभी बड़ी बड़ी फौजें तैयार करने के काबिल नहीं भी होते ना, तो हर इदारा, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर स्कूल, कितने तो प्लेटफॉर्म्स कुरान के और दीन के नाम पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अगर इधर से साहिबे खैर और साहिबे दर्द लोग निकलते आए, असल काम तो भी बाकी है। अक्सर लोग कहते हैं ना, इतने लोग सुनते हैं, इतने लोगों तक दीन की बात जा रही है, अच्छा। और कुछ लोगों को बड़ा शौक भी होता है भी कितने लोग सुनते हैं और कितने आते हैं और कहाँ आते हैं। तो मैं अक्सर एक जुमला बोलती हूँ, मैं कहती हूँ अभी तो आटे में नमक है, अभी तो ये हम मुसलमानों को तबलीग कर रहे हैं। सच बताएं, अगर आज मैं आपके साथ यहाँ इस मस्जिद में ये बातें कर रही हूँ तो क्या ये बातें मुझे आपसे करने की जरूरत थी? नहीं, हम सबको मिलकर गैर मुस्लिमों को ये बातें बतानी थी कि हमारा दीन इतना खूबसूरत है, और तुम भी इस दीन पे आ जाओ। नबी सल्लम को तो कभी वाज नहीं देने पड़ते थे, उनसे तो नहीं लोग टाइम लेते थे दर्स का। जब कोई हुक्म उतरता था जाके आप लोगों को बयान करते थे और साथ ही कहते थे आप दूसरों को बताओ। उस दौर में मुसलमान होने का मतलब सही मुसलमान होना था, बामल भी, दीन के लिए तड़पना। नमाज रोजे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई छोड़ सके। अबू जहल के अल्फाज आपने कई बार सुने होंगे, कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दीन सच्चा है पर मुझे डर लगता है कबूल करते हुए, क्योंकि इसके बाद मुझे फिर इबादत करनी पड़ेगी। हालांकि उस वक्त तक नमाज फर्ज नहीं थी लेकिन आखिरी दिनों में हो भी गई थी। शराब छोड़नी पड़ेगी, जुआ छोड़ना पड़ेगा, जिना छोड़ूंगा, और अभी मैं इन पाबंदियों के लिए तैयार नहीं हूँ। गोया कि अबू जहल को इस्लाम का वो मतलब पता था जो आज बहुत सारे मुसलमानों को नहीं पता। कितने परसेंट लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो वक्त पे पढ़ते हैं। मैंने देखा है कि औरतों को उनके घर के काम, आप सबसे माजरत के साथ, और मर्दों को उनके कमाने ने नमाजों से कैसे दूर किया। जो पक्के नमाजी है ना, वो भी या तो लेट करके पढ़ेंगे या आखिर में रात को पढ़ेंगे या दो दो जमा करके पढ़ेंगे। आज कितने लोग हैं जो मस्जिद में आकर नमाज के वक्त पे नमाज पढ़ते हैं? कितने ब्रदर्स होते हैं इस मस्जिद में जोहर की नमाज में, कोई बताएगा आप लोगों में से जो इधर रहते हैं? या किसी, आप जाके मर्दों से पूछिएगा। मैं आपसे ना क्यों पूछ लूँ, पूछ लूँ, माइंड तो नहीं करेंगे? और मैं तो आपको जानती भी नहीं। आप में से किस किस के घर के मर्द 5 नमाजें मस्जिद में जाके पढ़ते हैं, वो हाथ खड़ा करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, माशाल्लाह 14-15 लोगों के हाथ खड़े हुए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हम यहाँ कितने हैं इस वक्त? हो सकता है कि आप ना जानती हो और आपके मर्द पढ़ते हो, सारे बताते थोड़ी हैं। लेकिन यकीन करें कि इस वक्त उम्मते मुस्लिमा के मर्दों में से अक्सरियत बस नमाज पढ़ने को भी काफी समझती है। आप कहेंगे ना जो अजान हो या नमाज पढ़ो, कहते पढ़ते तो हैं ना, पढ़ ली थी, घर में पढ़ लेंगे, डिले करेंगे। और मैंने मुसलसल ड्राइविंग करते लोगों को देखा है, एक जगह रश में फंसे, दूसरी जगह गए, बीच में नमाज आई, मस्जिदों ने पुकारा, नहीं रुके, वो इशारे ही नहीं अल्लाह के समझे क्या, कि ये ट्रैफिक में रुका हूं ना, डिले तो हो रहा हूं ना, तो अगर मैं एक जगह मस्जिद में रुक के 3 फर्ज मगरिब के पढ़ के फिर बैठ जाऊं, अल्लाह ने सारे रास्ते खोल देने हैं। हम कहते हैं हमारी दुआएं नहीं लगती बच्चों को, मैं माँ हूं इतनी दुआएं करती हूँ, मैं बहन हूँ भाइयों के लिए इतनी दुआएं करती हूँ, और मैं बीवी हूँ अपने शोहर के लिए इतनी दुआएं करती हूँ। हम अक्सर ऐसे सोचते हैं, असल में वो दुआएं क्यों नहीं लगती, क्योंकि उसके रास्ते में रुकावटें हैं। करें क्या, अपनी जगह एक चिराग जलाएं। अब ये तो मैंने बात की ना घरेलू सतह पे, अब जाहिर बात है कि हर काम प्रोफेशनल से कराते हैं ना, कपड़े घर में भी सिलते हैं लेकिन लोग दर्जियों से सिलाते हैं, क्यों, कि वो ज्यादा अच्छे सियेंगे, खाना घर में भी पकता है लेकिन कैटरिंग कराते हैं ना। अब दीन के इस रूप को, इस रंग को पैदा करने और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसे इदारों की और ऐसे साथियों की ज़रूरत है कि जो ये दर्द रखें, मिल के अपने रिसोर्सेज को जमा करें और फिर अल्लाह के लिए काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप 99% मुस्लिम आबादी वाले मुल्क में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं है अल्लाह के हुक्म से, आपको शर्म भी नहीं आती है कि हम मुसलमान हैं ये कहते हुए, तो बिस्मिल्लाह करें। आप देखिए कि घोल बनाएं, जैसे आपने सुना होगा कि सफाई की मुहिम चलती है ना, हफ्ता सफाई, यहाँ पता नहीं मनाते हैं कब, लेकिन हर मुल्क में कुछ ना कुछ तो होता है, जैसे नॉर्वे में उनका मई के महीने में वो यौम आज़ादी आता है ना, जैसे हमारा 14 अगस्त है, तो वो फिर उस पूरे 17 मई है शायद, 1 मई से लेकर 17 मई तक वो सारे शहर को साफ करते हैं खुद, सड़कों पे बच्चे स्कूलों की तरफ से आते खुशी खुशी, कोई कंकर उठा रहा है, नई नई बर्फ गई होती है, खुशी खुशी, जैसे हम शादी से पहले घर की सफाइयां करा रहे होते हैं ना, व्हाइट वॉश, ये वो पूरा मुल्क अपना सजा देते हैं, 17 मई को हमने अपना मुल्क नया करना है, ये जाहिरी सफाई है ना। इसी तरह याद रखिए कि हमें तहारत की जरूरत है, हम अंदर से अगर अपनी उम्मत को ले जाएं, एक कौम और एक नेशन होने के नाते पाकिस्तानी कौम जैसी कोई कौम नहीं है, आपको ये भी बता दूं, पूरी दुनिया में इस बात पे तारीफ है, वर्कर्स दो ढूंढने हो ना, मिसाल है एक अगर फिलिपिन है और एक पाकिस्तानी है, तो फर्में जो है ना वो पाकिस्तानी वर्कर को प्रेफर करती हैं, क्यों, नंबर एक हद से ज्यादा मेहनत करने वाले, दूसरी बात थोड़े पैसों पे काम कर देते हैं, और तीसरी बात है कि वो एक दफा लग जाए वो जाते नहीं, क्योंकि उनका तो गोल जाएगा यही जिएंगे यही मरेंगे। बच्चों के जो डे केयर्स हैं वहाँ, नॉर्वे की बात बता रही हूँ, वहाँ माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो काम करते हैं, तो वो कहती हैं सिस्टर्स के जो पाकिस्तानी सिस्टर्स हैं ना, उनको डे केयर में एज अ हेल्पर या टीचर या जो बच्चों को देखना ही होता है, उनको ज़्यादा आसानी से जॉब देते हैं, क्यों, कि पाकिस्तानी औरतें सफाई बहुत अच्छी रखती हैं, बच्चे को साफ करना रखना, हार्ड वर्किंग, ये समेट वो समेट, ऐसी 200 मसाले मौजूद हैं। तो ये ना सोचिए कि हम पाकिस्तानी कंडम लोग हैं या रिजेक्टेड माल आ गया पाकिस्तान में, वल्ला ही ऐसा नहीं है, बेहतरीन कौम है हमारी, हमारा मुल्क बेहतरीन है, अल्लाह ने इसके अंदर अभी जो खजाने डाले हुए हैं आपको तो अभी पूरे खुले ही नहीं वो, और वो खुलने पता किस दिन है, वो कैसे खुलने हैं, वो एक किसी एक स्पीकर की बात सुनी थी, अब दुनिया में नहीं है, सऊदी अरब में रहते थे, तो कहते हैं कि एक पाकिस्तानी बच्चा मुझे नजर आया, तो उसने कहा डॉक्टर साहब या प्रोफेसर साहब पाकिस्तान में तेल निकल आया, तेल से मुराद जो सऊदी अरब का तेल है जैसे पेट्रोलियम, मैंने कहा कैसे कहाँ निकला है, कहते क्यों भाई कैसे, कहेंगे वो जनरल जियाउल हक ने ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान में इस्लामी शरीयत नाफिज करेंगे, तो इसका ये मतलब है जिस दिन इस्लामी शरीयत नाफिज होगी उस दिन तेल निकलेगा, क्योंकि सऊदी अरब में भी तभी निकली थी, आपको पता है ये बात, सऊदी अरब गरीब मुल्क था, लुटेरे चोर थे, ये 1929 या 19 या 19वीं सदी के शुरू की बात है, कि जिस वक्त वहाँ उन्होंने शरीयत नाफिज की, अल्लाह ताला शाह फैसल शहीद रहमहुल्ला को इसकी जजाए खैर दे, आपने नाम सारे सुने हुए हैं, जब से सऊदी अरब में इस्लामिक लॉ नाफिज हुए हैं आप देखिए कि वहाँ के खजाने सिमट ही नहीं रहे, अभी भी कहते हैं कि वहां सोने के वो काने हैं कि जिसको वो खोल ही नहीं रहे, की जरूरत ही कोई नहीं, देखेंगे आगे जाके, जमीन खोदते हैं तो तेल निकलता है, और आप हमारे इस मुल्क में जो मादनियात हैं इसी पे लोगों की नजरें पड़ी हुई हैं, दुनिया के बेहतरीन डायमंड के खजाने आपके मुल्क में, सुई गैस का सबसे बड़ा सिस्टम, नमक के खजाने, ये ग्वादर पोर्ट जो अब आपके नामों में कहीं ना कहीं कानों में पड़ता ही होगा नाम, अल्लाह ने इस मुल्क को बहुत दिया है। जितना पैसा हमारे इस मुल्क में है कैश की सूरत में, दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। अमेरिका में कभी किसी की जेब में $100 नहीं होता, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ। 10 का नोट रख लें, 5 का रख लें, बड़ी बात है। एक तो कार्ड होते हैं, दूसरी बात है इतना बड़ा नोट लेकर चलें। मैंने इनसे अक्सर पूछा, मैंने कहा $100 से बड़ा नोट क्यों नहीं होता? और पाउंड्स अगर यूरोप की बात करूँ तो 50 पाउंड से बड़ा नोट नहीं है। नॉर्वे में जहाँ रहती हूँ वहाँ सबसे बड़ा नोट 1,000 रुपये का है। क्यों? इसलिए कि वैल्यू है। और आपके मुल्क में 5,000 का नोट तो आ गया ना, है ना, 5,000 का, उससे बड़ा तो नहीं अभी कोई आया। मेरी बात लिख ले, आज की डेट पे 13 फरवरी 2017, अगले 5 साल के अंदर यहाँ 10,000 का नोट भी आएगा। और एक आसान सा रूल समझ ले इकोनॉमिक्स का, किसी मुल्क में बड़े से बड़ा नोट आना उस मुल्क की करेंसी के, इकोनॉमी के डूबने की अलामत होती है। क्या बताऊँ, 5,000 का भी कुछ नहीं आता, इसको एक नोट में कर दो। अमेरिका में पहला नोट मेरा ख्याल है $1 का है, उससे नीचे सब रेस कर रही है। आपके मुल्क में मुझे नहीं पता, 5 रुपए का भी मैंने सिक्का ही देखा है, रुपया खत्म हो गया ना, ये 5 रुपए का सिक्के में बदलना आपके इस मुल्क में पैसों के ज्यादा होने की अलामत है। एक और मुल्क है, मैं भूल रही हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, शायद जिम्बाब्वे या क्या है, आपको पता है कि वहाँ लोग जब सुबह डबल रोटी खरीदने जाते हैं ना, तो इतने बड़े बड़े तोड़े, जिसको हमारी जुबान में कहते हैं थैले, उनमें अपने पैसे भर के जाते हैं और वो थैला पैसों का पकड़ाते हैं, तो बदले में एक रोटी आती है, एक डबल रोटी आती जी। एक बंदे को दिखाया कि वो जब कोई शॉपिंग जब आप करने जाते हैं तो कितने को नोट जेब में रख लें, क्या भार है। जब वहाँ कोई शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो रेड़ियों के ऊपर अपने मुल्क की नोटों की गठियाँ रख के, तो रेड़ी के ऊपर पैसे लेके जा रहा है कि चीज़ें खरीदनी है तो आएंगी नहीं इस पैसों की। बात समझ रहे हैं? आपके मुल्क में बहुत पैसा है, अमेरिका में इतना पैसा नहीं है। बाहर के मुल्कों में पैसे की कदर है, वैल्यू है। वहाँ 100 रुपये की जो वैल्यू है, वो यहाँ मेरे हाल अब 10,000 की भी वो नहीं रही। कमी कोई नहीं है, मत कहें कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। सिर्फ आप अपने अंदर वो तड़प पैदा करें, तलब पैदा करें। और फैज़ा आज़म तफतवक्कल अल्लाह, जब अल्लाह पे नजरें लग जाएं तो फिर जो होगा सो होगा। कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं तो हूं। कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मेरे अंदर तड़प तो है। कोई जरूरी है कि कल हमारे नाम के साथ वहां बहुत बड़े बड़े कोई कारनामे लिखे हों? आप देखिए कि नबी सल्लम की मदनी दौर के बिल्कुल शुरू में एक जंग हुई थी, गजवे उहद, जिससे मैंने अपनी बात को शुरू किया था। मैं थोड़ा सा इसी पे खत्म करूंगी बात को अपनी। गजवे बदर जब हुई, ऐसे ही अचानक ही हो गई, जिसको आप कहते हैं ना इत्तफाकी जंग हो गई, ना उम्मीद थी, ना तैयारी थी, ना तजुर्बा था, लेकिन फतह बड़ी खूबसूरत हो गई। उसके अगले साल गजवे उहद हुई। आज मैं जो चीज़ सोच के आई थी ना, वो गजवे उहद वाला मामला सामने रख रही थी कि उस दिन मुसलमानों के साथ हालात क्या बने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या प्रेशर था, लोगों ने साथ छोड़ा। अब इस वक्त पूरी कहानी नहीं सुना सकती, लेकिन ये बात सच है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कठिन तरीन हालात में भी दीन का काम किया, लेकिन आप मुतमईन रहे। आज जो मैं मैसेज देने आई थी ना, क्या बी रिलैक्स्ड, हम सारे पाकिस्तानियों को जरूरत है इस मैसेज की, रिलैक्स, अफरा तफरी छोड़ो, फिक्र करना छोड़ दो, परेशान होना छोड़ दो, जो है वो बहुत है, जो नहीं है आ जाएगा। गजवे बदर में तो इतने सख्त हालात थे कि नबी सल्लम के साथ जो 313 कुछ लोग थे, आपने उनको इस तरह असाइन किया, आप उधर आप उधर आप उधर, सब की अच्छी अच्छी जगह लगाई, उनको काम दिया, जिसको आप कहते हैं टास्क मैनेजमेंट की, और उसके बाद आप अरीश एक ऊंची सी जगह पे खड़े हो गए। और सहाबी कहते हैं, और वो सहाबी अबू बकर थे, कि अल्लाह के नबी वहाँ खड़े हैं, मुतमईन है, आहोजारी थी, दुआएं मांग रहे थे, लेकिन हलफली नहीं मची थी। आज हमारे मुल्कों में या हम लोगों में अफरा तफरी बहुत है, हर बंदा ही भुखला रहा है। इवन दर्जी को एक जोड़ा देने वाली औरत भी भुखला रही है, जूता खरीदने वाला परेशान है कि नहीं? मैं कहती हूँ आज हमारी एक शादी उस दौर की एक जंग से ज्यादा खतरनाक है। उसमें जो कोशिशें और तैयारियां उनकी होती थी दुश्मन पे फतह पाने की, वो आज हमारी एक शादी के मौके पे अपने आप को नुमाया करने की कोशिशों में उससे ज्यादा हो गई है। बुरी लगे बात तो माफ करें, अलमारियों में रखने की जगह नहीं है और फिर कहते हैं क्या पहनेंगे भाई, ये फलां मौके पे पहनना था, तो फिर क्या हो गया? आपकी शक्ल भी तो वही है ना, पिछले 25, 30, 40, 50 साल से आपको भी तो लोग बर्दाश्त कर ही रहे हैं ना, आप शक्ल तो नहीं लेके जाते? कपड़े बदलने से क्या होता है तो पहन ले, नहीं है तो ना सही। फकीरी क्या है? तलब कोई नहीं, मिल गई तो मना नहीं। वो कहते हैं ना कि तमा ना करो, किसी ने पूछा दरवेशी क्या है, कहते किसी चीज की तमा ना करो, खुद मिल जाए तो मना ना करो, और अगर मिल के भी चली जाए तो गम ना करो, बेनियाज रहिए। एक दो माह पहले किसी की बिल्कुल अचानक शादी हुई ना ऐसे ही, और बिल्कुल सिंपल सा निकाह था, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी, बट मैंने उसमें वो से एक हफ्ते में जो उनकी जिद्दोजहद और जिहाद फिर दुनिया देखा, मैं पड़ गई कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। अगर ये लड़की सिर्फ इस निकाह के मौके पे एक जोड़ा नहीं भी बना लेती नया, क्यामत आ जानी थी, कोई ऐसा मौका भी नहीं था कि जरूरी बने। लेकिन हमारी रह नहीं आती क्योंकि लोग अहम हैं, ये भी बात कहूंगी जरूर, जब लोगों के लिए हम जिएंगे तो दुखी होंगे। मैंने पहनना है अपने लिए पहनना है, मेरा दिल करता है मैं पहन लूंगी, मेरा नहीं दिल करता मैंने नहीं पहनना। और अगर मैं यूं कहूं मैं आपके लिए पहनूंगी और शादी में अगर मैंने ना अच्छा पहना तो लोग करेंगे, अल्लाह की कसम कोई किसी का नहीं देखता, देख ले तो 15 मिनट बाद याद ही नहीं रहता, अपने आप को देखते हैं। और मैंने ये भी बहुत देखा, ये तो पूरी दुनिया में है, सेल्फ कॉन्शियस। पहले शादियां होती थी लोग दुल्हन को देखने जाते थे, अब किसको देखते हैं? ये मेरे एंगल से ही देख लें, हालांकि मुझे जहर लगता है ये तसव्वुर, समझ गए? शादी हॉल में सरेआम अपनी तस्वीरें लेते लोगों को देखे आपने? ये बुत हैं जो हम पूछते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा मुझे नहीं पता था कि ये सेल्फी नाम की एक चीज इजाद हो गई और आप अपनी तस्वीर लें इसको सेल्फी कहते हैं। मुझे ये मेरे लिए कोई 1 साल से भी कम वक्त पता चल हुआ है कि ये लोग लेते हैं, बड़ा मायूब लगे। अब बैठे ना, आप देखिए आप और मैं दर्द सुन रहे हैं दे रहे हैं, तो मैं इतने में अपने आप को देखने और चमकाना शुरू कर दूं, आप अपनी तस्वीरें लें। कल की शादी में भी मैंने देखा है पोज बना बना के, सब अपने कामों में हर बंदा अपने आप को देख रहा है, ये है सेल्फ प्रोजेक्शन। कौन किसको देखता है? कई लोग कहते हैं दुल्हन तो देखी नहीं, ये था आपने क्या पहना था पता नहीं, मुझे तो अपनी होश नहीं थी, मैं तो सबका अपनी मैचिंग में परेशान थी। ये मकसद नहीं है, कितना करोड़ों का नुकसान है। सिर्फ एक शादी आपके खानदान में जो होती है ना, आपको पता कितने पैसे उसकी भेंट चढ़ते हैं? लड़की उसकी तैयारी मैके में भी हो रही है, ससुराल में भी हो रही है, अंदाजा लगा सकते हैं? बस ये लफ्ज़ बोलते हैं, 5 का है। अभी एक शादी हुई रिसेंटली हमारे घरों में, तो किसी ने कहा 7 लाख का था सिर्फ जोड़ा दुल्हन का, तो अल्लाह करे कि वो चलती रहे निभती रहे दोनों तरफ के जोड़े, कहां से ये कितनी मुसीबत पड़ गई, कहां से लिए आपकी बला से, कहां से लिए? जोड़े से पहले मोहर देखनी है, सेल लग जाए तो ऐसे लगता है कि आज के बाद कभी नहीं मिल, नदीदापन, सच्ची बता रही हूं, आंखें खुली मुंह हल्के और दीवानों की तरह। मैं एक जगह कहीं से गुजरी थी, हैंगर उठाए नहीं जा रहे और औरतें लेके लाइनों में यूं, क्योंकि सेल लगी हुई और 2 दिन रह गए और खत्म, और सब उनका निकल गया। वो भी कहते हैं चलो ले जाओ तुम घरों में, हमने भी तो पूरा साल स्टॉक संभालना ही है ना, तुम ले जाओ। याद रखिए ये उम्मत मुस्लिमा का मकसद नहीं था। और मजे की बात यह कि हम सोचते हैं ये सब करके हम खुश होंगे, मैंने फिर भी उनको खुश नहीं देखा। जो किसी के पहने हुए पहन लेते हैं वो ज्यादा खुश हैं, वजह क्या है? कि हम मकसद से भूले हुए हैं। मेरा ख्याल इतना काफी है, ठीक है? जजाक अल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अय्युनिन व जअलना लिलमुत्तकीन इमामा। اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. या अल्लाह हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा, कमी बेशी से दरगुजर फरमा। या अल्लाह जो साथी आए और बैठे और सुना, या अल्लाह उन सब को इसकी बेहतरीन जजा दे। या अल्लाह बच्चों वाली माओं को जो थोड़ी बहुत तकलीफ हुई उनको इसकी बेहतरीन जजा दे। या अल्लाह हमें अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों का गम लगा दे। या अल्लाह हम अपने घर वाले अपने इर्द गिर्द वालों तक हर अच्छी बात को पहुँचाने वाले बन जाए। या अल्लाह हमारे पूरे दिन का खुलासा ये निकले कि आज मैंने तेरे दीन के लिए क्या किया। या अल्लाह रोटी हांडी खाना पकाना सफाइयाँ ये तो सारे ही करते हैं, या अल्लाह हमें इससे ऊपर उठाकर कोई बड़ा काम करने वाला बना। या अल्लाह हमारे रिसोर्सेज सिर्फ हमारे इस पेट की और हमारे बदन की ज़रूरियात को ही पूरा करने में ना गुजर जाएं, हमें इस रूह की तड़प और तलब का भी ख्याल रखने वाला बना। या अल्लाह हमारे अंदर जो कुछ भी टैलेंट है जो खूबी है उसको अपने रास्ते में लगा ले। या अल्लाह हमें खुद नहीं पता हम क्या कर सकते हैं, तू हमसे करा ले। या अल्लाह अगर कुछ भी नहीं है तो हमारे अंदर कोई ऐसे जज्बे भर दे। या अल्लाह हमें ऐसी खूबियों से माला माल कर दे कि हम तेरे दीन को सर्व कर सकें। या अल्लाह ये तलब और तड़प लगा दे। या अल्लाह बेहिसी दूर कर दे। या अल्लाह हम कैसे गंदगी पर राजी रह सकते हैं। या अल्लाह हमें नफीस बना दे, हमें सफाई पसंद बना दे। या अल्लाह जो साथी इसके लिए काम करें कोशिशें करें उनको बरकत दे। या अल्लाह जो इसमें इरादे करते हैं या अल्लाह उनको इरादों की तकमील करने वाला बना। या अल्लाह जो भी जगहें तेरे दीन के नाम पे मुख्तस होती हैं या अल्लाह उनका हक अदा करने वाला बना। और या अल्लाह हम सबको उसकी कदर करने वाला बना। या अल्लाह ये किसी जगह पर बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान होता है कि अल्लाह वहाँ दीन का काम शुरू करवा दे। या अल्लाह अगर तू हम पे ये एहसान कर रहा है तो हमें इसकी कदर की तौफीक दे। या अल्लाह हमें ना शुक्रे लोगों से बचा ना कदरे लोग बनने से बचा। या अल्लाह हमारी नेमतों को बढ़ा। या अल्लाह हमारी वजह से खैर फैल जाए। और या अल्लाह जो जिस तलब को दिल में लिए बैठे अपनी रहमत से उनको दे दे। या अल्लाह उठे हुए हाथों की लाज रख ले। और या अल्लाह सफ़ेद बालों वाले और मासूम बच्चे, या अल्लाह इनके उठे हुए हाथों पे हम सब की तरफ से या अल्लाह आमीन करवा दे। या अल्लाह जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश फरमा, उनके दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह जा के वापस कभी कोई नहीं आया, हमने ही जाना है। या अल्लाह इतनों को भेज कर भी हमें ये समझ ना आया कि ये दुनिया एक वबाल है, ये एक बोझ है। हजरत अली ने कहा कि ऐ दुनिया मैं तेरा क्या गम करूं, हलाल से मिलेगी तो हिसाब देना पड़ेगा और हराम से मिली तो अजाब का जरिया बनेगी, मैं तुझे नहीं लेता। या अल्लाह हमारे दिल से हिरस निकाल दे, तमा निकाल दे। या अल्लाह हकदारों को उनके हक दिलवाने वाला बना। या अल्लाह मैं हक के लिए आवाज़ उठाने वाला बना। या अल्लाह आखरत की पकड़ से बचा। या अल्लाह हमारा ज़मीर हमें खुद ही झंझोड़ दे। या अल्लाह तू अपने हाल से इस मुल्क के ऊपर रहमत फरमा। या अल्लाह तेरी शान है, हम मानते हैं कि हमारे अंदर कमी है, लेकिन या अल्लाह तो अपनी रहमत से हमारे इस मुल्क के हालात को संवारने में हमारी मदद कर दे। और या अल्लाह इस मस्जिद पे भी अपना रहम फरमा। या अल्लाह जिन्होंने भी इस काम में कोशिश की, जो भी खिदमत करते हैं इधर, या अल्लाह तो उनकी इन कोशिशों को कबूल फरमा। और या अल्लाह हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम दूसरों के साथ अपने मामलात को दुरुस्त कर लें। या अल्लाह किसी से नाराज़गी है तो यहाँ बैठे बैठे हमें उस नाराज़गी को दिल से निकालने वाला बना दें। या अल्लाह किसी पे गुस्सा है तो हमारे दिलों से वो गुस्सा निकाल दें। या अल्लाह किसी से नफरत है तो उस नफरत को मोहब्बत में बदल दें। या अल्लाह हमें बड़े मकासद के लिए जीने वाला बना। या अल्लाह बड़ी मंजिलों के राही छोटे छोटे मसलों में नहीं उलझते। या अल्लाह हमें बड़े गम लगा और इन छोटे छोटे गमों से बेनियाज कर दें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين